اور پیج نمبر 254 اور کلش نمبر 92 بھاو بھاو پرمارتھ دیکم میں ہوں ایت پنج کی چند میں کیا ہے بھاو ابھاو بھاو پرمارتھ تیکم اس کا ہندی انواد ہے کہ بھاوا بھاو بھاو مے تو بھاو مانے اتپاد پہلے بھاو کا ارتھ ہے اتپاد دوسرے بھاو کا ارتھ ہے بے ابھاو ہے نا بھاو ابھاو اور تیسرے بھاو کا ارتھ ہے دھوب بھاو ابھاو بھاو تو بھاو مانے اتپاد ابھاو مانے بے اور دوسرے بھاو مانے دھو تو یہ آتما کیسا ہے پرمارتھ تیا ایکم یدپی یہ اتپاد وے دھروب والا ہے تو بھی پرمارتھ سے ایک ہی ہے انیک نہیں ہے کہ تین والا ہونے تری سواب ہونے سے یہ انیک ہو گیا ایسا نہیں ہے تو ابھی ایک ہی ہے کیا پرمارتھ تیا ایکم پرمارتھ سے وچار کریں تو ایک ہی ہے تو ایک ہے تو وہ چت سواب ہے چت سواب سے بھرا ہوا ہے چت سواب بھر بھاوت بھاوا یہ بھگوان آتما چت سواب سے پورا بھرا ہوا ہے اور اس سے ہی بھائے جانے یوگ ہے مانے بھایا جاتا ہے چت سواب بھر بھاوت بھاوا بھاو ابھاو پرمارتھ تیکم ہو گیا نا اور اس طرح سے ایسا بھگوان آتما کہ سم اتپاد وے دھروب سروپ ہے اس کے اتپاد کرنے کے لیے کسی دوسرے کے سہیوگ کی ضرورت نہیں ہے اسے دے کرنے کے لیے کسی دوسرے سہیوگ کی ضرورت نہیں ہے اور سویم کو قائم رکھنے کے لیے بھی دوسرے کے سہیوگ کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتپاد یا دھروب ہے کیا یہ تو ایک کروٹ بدلنا ہے دھروب نے کروٹ بدلی خیال میں آئی نا تو جس ویکتی کو اپنی کروٹ بدلنے میں کسی کے سہیوگ کی آوشیکتا پڑتی ہو وہ جگت کا کیا نحال کرے گا بولو کہ وہ اپنی کروٹ سویم نہ بدل پائے اور کسی دوسرے کے سہیوگ کی آوشیکتا پڑے تو یہ کہتے ہیں بھگوان آتما ایسا نہیں ہے کہ اپنا اتپاد وے دھروب کرنے میں اسے کسی کے سکرم کے ادے کی کرم کی اپیکشا ہو کیوں کہ اتپاد وے دھروب یوکتم ست اور ست درب لکشنم یہ تو اس کا استتو ہے جس کو اپنے استتو کے لیے پر کے سہیوگ کی ضرورت پڑے تو اس کا جگت میں کہاں استتو ہے نا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھگوان آتما اپنے اتپاد وے دھروب کرنے میں پوری طرح سمرتھ ہے اس لیے بند پدھتی اپاس سمستام میں ساری بند پدھتی کو ریجیکٹ کرتا ہوں ریجیکٹ کرتا ہوں میں نے کیا جیسے آروپ لگاتے ہیں نا کوئی کسی پہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے آروپ کو ریجیکٹ کر دیا میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ آپ کا آروپ صحیح ہے غلط ہے ختم اپاس مانے ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا میں ساری بند پدھتی کو ہی میں ریجیکٹ کرتا ہوں تو بند پدھتی کا ورنن کرنے والے شاستر کا کیا ہوگا کیا اسی لیے تو وہ آگے جڑ کے نکل رکھا ہے نا کیا کہ دھرم دھیان سے اندھی ہوئی ہے بدھی. کون سا لکھا, کون سے دھرم دھیان؟ وپاک وتے دھرم دھیان سے اندھی ہوئی ہے جن کی بدھی, ان کو سمجھاتے ہیں, ان کے اجان کو دور کرنے کے لیے میں یہ لکھتا ہوں, ایسا لکھا ہے اس میں. اس دن بتایا تھا نا, ایک دن ہے یاد, موکش ادھیکار میں انہوں نے نکال کے بتایا تھا نا. اب ذرا ہندی میں پڑھ لیں اس کا. میں ہوں وہ چت پنج کی بھاوا بھاو بھاو میں, سمے سارم اپارم چیت. اس ساری بند پدھتی کو تو میں نے پار کر لیا, جو اپار سمے سار ہے تو چنمے ہے مات میں, اس کو میں چیتتا ہوں. چیتتا ہوں میں نے, اس میں یہی میں ہوں ایسا مانتا ہوں, ایسے روپ بھی میں پرنمت ہوتا ہوں. کہتے چیت جاؤ تو میں اپنے بھگوان آتما میں چیتتا ہوں. دیکھو اب اس میں ایک ایک شبد کا انواد ہے, وہ بالکل اسی بھاشا میں اور سرل بھی ہے, جو ہے نا. میں ہوں وہ چت پنج, یہ ہے نا چت سواو بھر بھاوت, اس کا ارتھ میں ہوں وہ چت پنج, بالکل اسی کا اوپر کے نیچے کی بھاوا بھاو بھاو میں, کہ بھاو ابھاو اور بھاو میں ہوں, اوپر آ گیا. پرمارتھ سے یہ پرمارتھ تیکم, دیکھو بالکل ایک ایک ملان کرو آپ. پرمارتھ سے سدا ایک اوچل سواو میں, ہے نا, پرمارتھ تیر ایکم ہے نا, تو پرمارتھ سے ایک 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 شبد ملان کر لو آپ. سدا اوچل سواو میں, اور اوچل سواو والا ہوں میں. کرم جنت یہ بند پدھتی کروں پار میں, کرم بند پدھتی اپاس سمجھتا, اس کا ہو گیا نا. اور نتیہ انوبھو کروں کی چنمے سمے سار میں, کہ میں سمے سارم اپارم چیتے, کہ میں ایسا انوبھو کرتا ہوں کہ میں چیتنیہ سمے سار میں ہوں. مطلب بالکل سرل, ایک شبد چھوٹا نہیں, اسی کرم میں کرم بھی بدلا نہیں, کہ نیچے اوپر کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی, لیکن اس میں ضرورت نہیں پڑی. اب اس کو پڑھو تو آنند آنا چاہیے نا, اس کا بھاو خیال میں آئے تو آنند آئے گا. میں ہوں وہ چت پنج کی بھاوا بھاو بھاو میں, پرمارت سے ست کرم جنتے ہے پرت کبت, یہ دھرم ہے. دھرم اسے کہتے ہیں, اس جگت کو اس میں دھرم نہیں لگتا ہے. کیوں؟ قلم نیم سار کا ختم ہوا نا, تو اس کا سارے چھندوں کا پاس کر رہے تھے, جس میں 100 سے زیادہ تو کلش ہیں اور قریب 26 گاتھائیں ہیں. تو وہ ودیارتھی بولا جو پاٹھ کرتا تھا کہ ایک ودھان ہو گیا, پورا ودھان پڑھنا ہے آج. کیوں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے یار کیا مٹی پلیت کر دی ہے میرے نیم سار کی. تجھے تک کتنا پڑھنا پڑے گا کہ جتنا ایک ودھان کرنے میں پڑھنا پڑتا ہے, تم نے اپنا حساب لگایا ہے کیوں؟ لیکن یہ تو ساتھ ساتھ کند کند کی بانی ہے, دھیان رکھنا, امرتند کی بانی ہے, اور آگے جائیں تو بھگوان مہاویر کی بانی ہے. جو اپنے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ جیون کے سمے کا سب سے بڑھیا اپیوگ, اور وہ گارنٹی سے بھگوان کی بانی تو نہیں ہے, وہ بدھان تو اس بھگت کی بانی ہے جو بھگوان وہ بھکتی میں کہہ رہا ہے. وہ کتنا صحیح غلط ہے اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن آخرکار ہے کیا؟ ہے؟ वो भगवान ने कही है वो कि भक्तों ने भगवान को सुनाई है, और उसमें क्या है देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं कि जितने भी अपने विधान हैं उनका मूल बेस क्या है। तो तीन चीजें हैं, एक अकीर्तन तैत्यालय, पचहत्तर % विधान तो इनमें निबट जाते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। दूसरे समोसरण, बाकी के 10% इसमें निपट जाते हैं, और बाकी अपने 24 तीर्थंकर हैं, ये हैं वे हैं जो मैं पूज्य हूं उनको विधान से करनी, इसी में सारी विधान खत्म हो गए। अब वो पहले वाले को लेते हैं जो अकीर्तन तैत्यालय है ना, अब उनकी आप कभी पढ़ो ध्यान से शांति से, एक आध संजीव गोदा की क्लास लगा लो तो वो बता देगा आपको। वैसे आप सब जानते ही हैं एक बिल्कुल एक सुनिश्चित क्रम है, बीच में एक सुमेर पर्वत है, उसकी चारों दिशाओं में तार अर्घ्य दंत हैं, अक्षय ग्रहण हैं, ये हैं ये हैं, वो बिल्कुल नक्शा एक सा बना हुआ है। फिर एक एक मेरु में कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं, उद्गत दंत में कितनी है, फलाने में कितनी है, बिल्कुल एक सिस्टम तय है क्या, और बस उनको वहां वहां प्रतिबिंब है उनको आप अर्घ चढ़ाते हैं। कोई विधान हो चाहे आपका, आप समझे ना, चाहे 13 दीप विधान हो, चाहे 2.5 दीप विधान हो, चाहे जम्मू दीप विधान हो, वो उन्हीं में से विधायक मिलू करके ख्याल में आई ना ये सब तीन गुण। अब उसमें क्या होता है, एक छंद बनाना है। अब विधान बनाना अभी आप 2 घंटे में पूरे विधान बना लो, मैं विधि बता देता हूं क्या? आप बोलेंगे कि सुमेरु नामक पर्वत उसकी दक्षिण दिशा में फना गिरी फना गजदंत तो फना चैत्यालय, वहां जिनमें मैं उनको मैं अर्घ चढ़ाता हूं। अब इसमें से एक बदलते जाओ, पहले वो एक चैत्यालय से दूसरे चैत्यालय में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, चार हैं चारों तरफ, तो इसकी उत्तर दिशी पश्चिम दिशी पूर्व दिशी फलानी दिशी, और फिर उनमें से वो गजदंत पे आ जाओ, फिर मेरू पे आ जाओ, फिर एक दिशा पूरी खत्म हो जाए ना तो उत्तर दिशा में चल दो दूसरी में, तो पूरे के पूरे वो रिपीट कर दो, सिर्फ वहां दक्षिण की जगह उत्तर दिशा लिख दो, खत्म। वो कुछ नहीं करना है परिवर्तन, फिर पूरब लिख दो, फिर पश्चिम लिख दो, बस खत्म। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार चार अक्षर के, चार चार मात्राओं के चारों शब्द हैं, तो बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया। अब बस खत्म, एक निपट गया मेरू, अब दूसरे मेरू पे चलो और उसी क्रम में फिर घूम जाओ, फिर तीसरे मेरू पे, चौथे मेरू पे, पंचम मेरू पे, तो 2.5 दीप निपट गया, फिर वो अकीर्तन चैत्यालय बाद में है, नंदीश्वर दीप 8वें में है, फिर तो उसके भी 52 चैत्यालय नक्की है, तो उनको घुमा दो 52 चैत्यालयों में, वो भी इस दिशा में फलानी दिशा में ऐसे इधर उधर करके क्या। अरे फिर वो 13वें दीप में है, अब इतने में 13 दीप विधान, 2.5 दीप विधान, जम्मू दीप विधान, तीन लोक मंडल विधान, क्योंकि वो तीन लोक क्यों आ गया, क्योंकि अधोलोक में भी चैत्यालय है भवनवासी के अंतरों में, तो उधलोक में भी है, तो तीन लोग आप सुनिए एक सिस्टम में सब आ गए, 75% निमट गए, ना लिखने वाले को तकलीफ ना बोलने वाले को तकलीफ, फटाफट वो बोलते जाए लिखते जाए, उनके इसमें एक एक शब्द में इतना मर्म भरा हुआ आ रहा है, तो इनको तो उस सिस्टम में जो कुछ नहीं वो जगह लोकेट कर रहे अकेली, इतनी जगह ही नहीं है कि ज्यादा तत्व की कोई बात लिखे, नहीं साहब तत्व तो भरा है, आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं है, तत्व तो भरा है। वो अष्टकों में लिख दिया, उत्तम थमा के जलगम, उत्तम मार्दव चंदनम, उत्तम फलन, अरे अध्यात्म हो गया, थमा का जल, थमा का चंदन, थमा का सर। अब एक है वो कौन, कल्पद्रुम जिसे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं समोषण विधान। तो भगवान के जो समोषण की रचना होती है वो बिल्कुल सुनिश्चित है, इतने मानस सम में इतने जे हैं, यहाँ पे जे हैं, यहाँ पे हैं, ये तो उन सबको अर्घ चढ़ा देना, ये समोसन विधान कह लो वैसा बड़े रूप में कल्पद्रुम। अब क्योंकि अकीर्तन तैतालयों की वंदना करने के लिए मनुष्य नहीं जा सकते, सुनना जरा, इसलिए वहां इंद्र जाते हैं। तो जब भी कोई वो विधान करेंगे तो आपको इंद्र बनाएंगे, क्योंकि मनुष्य तो वहां जा ही नहीं सकता है। नंदीश्वर द्वीप में नंदी सुर सुर जात हैं, हम पूजे हैं, ये था ख्याल में आई ना, तो इंद्र बनाएंगे। और ये विधान कल्पद्रु विधान चक्रवर्ती करता है, तो आप वो चक्रवर्ती बना देंगे, आप इंद्र बन गए, चक्रवर्ती बन गए, मुफ्त में 10-5 लाख में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। शास्त्र तो कहते हैं बिना मरे नहीं बन सकते हो, तुम तो बिना मरे ही बना देते हो। अब बाकी 24 संघ है, 24 विधान बना लो क्या, 24 एक पूजा लिख दो, उसके पंचकरण के अलग चला दो, 24 विधान हो गया। पंचकरण का विधान बनाना है तो 5 पूजाएं लिख दो और एक एक में 24 अलग चला दो। जितने पंचकल्याण के हैं, जितने वेदी प्रदर्शनाएं हैं, जितने शादी विवाह हैं, सब में वो ही 118 मंत्र होते हैं। और सत्य जाता है नमा, अर्ध जाता है नमा, सिद्ध जाता है नमा, एक मंत्र होता है, उसकी इतनी माला फिर लो, उसकी इतनी आहुति दे दो, बिल्कुल वो उसकी मैं नग नस नस से बाफिक हूं। क्या है, क्या क्या कर रहे हैं? अब मैं यही समझाता हूं तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी हमारी निंदा प्रशंसा की बात नहीं है कि उसने, उस लड़के ने जब उसके मेरा विद्यार्थी 5 साल पढ़ा मेरे पास और उसके दिमाग में ये घुसा गया, ये विधान बन गया, क्यों समय भाव ने हमें जिनके कलश है, जिनके इसमें एक कलश और जिनमें कितना भाव भरा है, पूरी उनकी भगवान महावीर की दिव्य नदी का सार भरा है, क्या है क्या जी? उसे अपन क्या बोलते हैं, ये पाठ माने आमनाय नाम का स्वाध्याय है ना, तो उसे भी आप बोलते हैं भक्तांबर पाठ, सिद्ध चक्र पाठ, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन ठाट आठ, क्या है ये पाठ, क्या है कि हम एक साल में एक दफे उसको रिपीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, खत्म पाठ। जैसे आप शुद्ध जी का पाठ कर लेते हैं ना, तो वो भी वहां पाठ कर रहे हो आप, अब बीच में अर्घम अर्घम सुहा कर दो तो वो आपको लगता है पूजा हो जाती है, ये हो जाती है। तो वैसे भी पढ़ लो घर में बैठ के शांति से, जिनने उसका प्रूफ रीडिंग किया होगा उनने आपके 100 विधान कर दिए। यदि सचमुच ढंग से किया हो तो जिम्मेवारी पूर्वक भाव समझ के, क्यों कि भाई यहाँ पे एक ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक ख्याल में आए ना है? अब उसमें हमको बहुत बड़ा धर्म लिखता है, उसमें हम लाखों लाखों रुपए की बोली। अभी तो मैं देखो ये खोटी प्रवृत्तियां हैं, अब इसकी देखिए, पहले पंचकल्याणक में इंद्र बनते थे, फिर धीरे धीरे विधानों में इंद्र बनने लग गए, फिर एक दिन का विधान करो तो उसमें इंद्र बनने लग गए, फिर उसमें इंद्र सभा होने लग गई, फिर उसमें राज्यसभा होने लग गई, फिर उसमें पलना झूलाने होने लग गया। अब कहाँ के पलना, कैसे पलना, भगवान की मूर्ति उठा के रख ली, हर इनकम सोर्स इनकम पैसा 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 पैसा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बनियों के हाथ में ये धर्म पड़ गया, इसकी क्या दुर्दशा हो गई है। अभी देखो अजित भाई ध्यान से सुनना कि इतना स्पष्ट है फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि मेरे से 100 पंडित नहीं है, 560 पंडित सारे गांव गांव में समझाएं तो भी उसका उसमें से जरा भी श्रद्धा हटना बहुत कठिन है, और इन इन विद्वानों को बहुतों का पिटना ज्यादा सरल है। क्यों उतना पुण्य होता नहीं, उतना स्पष्ट अध्ययन नहीं, उतना समझा नहीं सकते, तर्क युक्ति से संतुष्ट नहीं कर सकते ना, तो क्या। अब समझ लीजिए कभी मैंने तो बहुत सारा जिंदगी लगाई है, ये सब मैं सब कर करके छोड़ा है। जब मैं बता रहा हूं आपको 100 सिद्ध चक्र विधान मैंने कराए होंगे, प्रतिष्ठाचारी बन गए शांति जी, आप समझे ना। पर एक पूछने के मैं को देखने की जरूरत ही नहीं है, मौखिक ही पढ़ता जाऊं, सुनाता जाऊं, बताता जाऊं, और उसकी जयमाला का अर्थ करने के लिए मुझे स्पेशल बुलाया जाता था। मुझे काम ही इसलिए मिलता था क्योंकि मेरा गला फला तो है ही नहीं, पर मैं तो उन्हीं लोगों को पढ़ता था, ध्यान गांव वालों को, समझे ना। मैं तो आगे, आगे पीछे की प्रक्रिया समझा देता था, बीच में पूजन के बीच में भी कभी कोई महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाना हुआ दिला देता था। लेकिन बस वो मेरे अर्थ की वजह से मेरे को इतने तरह से बुलाया जाता। और सबसे पहले बाबू भाई मेरे से प्रभावित हुए वो इसी कांड से हुए। सोनगढ़ में तो हम साथ साथ ठहरे थे, लेकिन गुरुदेव का प्रतिदिन सुनते थे, एक दूसरे का सुनने का मौका ही नहीं मिला था। मैं गुना में शिक्षक विधान करा रहा था, बाबू भाई इंदौर आए हुए थे परिसर में, तो वहां से गुना आए और दोपहरी में विधान होता था तो मैं जयमाला का अर्थ कर रहा था। और जयमाला में जब बाबू भाई आगे बैठे तो मैंने कहा आओ बैठो, आप करो आप करो, तो वे बैठ गए गद्दी पे। मैंने उनको किताब दे दी, अब उन्होंने पढ़ा, मालूम कौन सी पंक्तियां थी, भाव लिंग बिन कर्मे खिपाई वज्रद लिंग बिन सेव पद पाई, यों अरोज कारज नहीं होई त्यों तुम गथन कथन है सोई। इसके ऊपर वो चार पांच पंक्तियां हैं, कैसी हैं, गोखुर में नहीं सिंधु समावे बायस लोक अंत नहीं पावे, ऐसे अच्छे सात पंक्तियां हैं। हाँ, पंगू गिरी लंघे है, और वो कौन गुंगे आरंभ है स्वर से, वो सब पंक्तियां हैं। तो वो अर्थ किसी को नहीं आता था, बाबू भाई ने देखा तो माथा टकरा गया इसी का, तो बोले ये तो साहब इसका अर्थ आप ही करना, मैं तो अभी जो बोलना है मैं बोल देता हूँ। तो आधा घंटा उन्होंने व्याख्यान किया, अब फिर वो मुझे दे दिया कि अब आप अर्थ करो आगे। तो मैंने वो अर्थ बताया उन पांच पंक्तियों का, तो सब बातें उल्टी कि द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं होगा, भाव लिंग के बिना कर्म नहीं नष्ट होंगे, और ये सब अयोग्य कारज हैं, ऐसे ही तुम्हारे गुणों का कथन करना मेरे लिए अयोग्य है, योग्य है नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं क्या। तो प्रभु जी कहता था मैं आपको सारे गुजरात में ले चलूंगा, गांव गांव में आपको घुमाऊंगा, मैं वहां पर ये सब पूजा करवाऊंगा और आपसे इनका अर्थ करवाऊंगा, आप सुन रहे ना, इन पूजनों के जयमालाओं का अर्थ। तो मेरे जयमालाओं का अर्थ भी प्रसिद्ध रहा है बहुत, वो हमारे उस एरिया में बहुत लोकप्रिय था। तो जो ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने पूजने वो देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, करी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, पूरी उसकी नस नस जान के अब फिर ये सार लगा मेरे को, तब मैंने अपनी सारी इसमें लगाई। ये सबसे पहले जो बनाया था ना तलपवैया जी ने, कौन सा विधान, 450 पेज का इंद्रध्वज विधान, तो सबको 8-8 घंटे पढ़े और बहुत थक जाते थे। तो देवदारी वाले ने कहा, सबने कहा कि पंडित जी अब छोटा बना दो ना, छोटा बना दो। तो देखिए छोटा कैसे बनाऊं, छोटा कैसे बनाऊं, उतना ही बनेगा। तो मैंने ऐसे प्रतन में ही कह दिया कि छोटा बनाना है तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा तरकीब कैसे बनाना। बस 5 मिनट में मैंने बता दिया तो वो 180 पेज का रह गया, वो एक अक्षर छूटा नहीं क्या। उन्होंने वो बना दिया, फिर बाद में बड़े किसी ने नहीं किया, छोटे छोटा करते रहे सब। अब आप बताओ उसमें क्या था, जैसे है ना मैंने बताया ना, एक उत्तर दिशा है? तो उन्होंने उत्तर दिशा में हर एक की अलग अलग पूजने थी, मैंने कहा पूरी उत्तर दिशा की एक पूजने बनाओ और बाकी के सब अलग चढ़ा दो, फिर दक्षिण दिशा की एक पूजन बनाओ और बाकी के अलग चढ़ा दो। इन पांच पूजनों की यहां क्या जरूरत है, ठीक हो। सही बात है, इसमें ठीक है बना दी, 180 पेज का बन गया। अब और बड़ा बनाना हो तो वैसे ही बता दें, छोटा बनाना छोटा बना दें, मंजिला बनाना हो मंजिला बता दें। लेकिन ये कभी कभी छोटे बड़ों को खा जाते हैं, घबराना नहीं। क्या पहले मालूम, पहले बनी थी कौमदी, क्या बनी थी सिद्धांत कौमदी, फिर कहा ये तो बहुत बड़ी है ये नहीं पढ़ा सकते हैं, तो फिर किसी दूसरे ने बना दी लघु सिद्धांत कौमदी, तो एक बड़ी कौमदी हो गई सिद्धांत कौमदी और दूसरी हो गई लघु सिद्धांत कौमदी, वो भी इसी तरकीब से बनाई है, फिर कहा ये तो बहुत छोटी हो गई, तो तीसरे ने मध्य सिद्धांत कौमदी बना दी, तीन कौमदी हो गई ना, लघु सिद्धांत कौमदी मध्य सिद्धांत कौमदी और सिद्धांत कौमदी, अब वो सारी कौमदियां तो गायब हो गई, अकेली वो लघु सिद्धांत कौमदी आज भी खड़ी है, इस आज सब विद्यार्थियों को लघु सिद्धांत कौमदी पढ़ाई जाती है, हमने भी लघु सिद्धांत कौमदी पढ़ी थी, बाद में थोड़ी सिद्धांत कौमदी मध्य सिद्धांत कौमदी भी आती होगी, क्यों कि जगत संक्षिप्त प्रिय है, इसे ज्यादा विस्तार में जाने के लिए समय नहीं है, शक्ति नहीं है, रस नहीं है, तो ये लघु ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, बस खत्म। अब पढ़ते हैं जरा उसका अर्थ अपन, चित्त स्वरूप के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद वे और द्रव्य किए जाते हैं, चित्त स्वरूप के पुंज माने भगवान आत्मा है, मैंने चैतन्य स्वरूप जिनका ऐसे अनंत गुणों का पुंज, पुंज जानते हो किसे बोलते हैं, भगवान को चढ़ाते हो ना किसी चीज के समुदाय को बोलते हैं पुंज, क्या वो तो क्या कुछ भी किया ले, वहां पुंज शब्द का अर्थ है कई कई चीजों के मिले हुए समूह का नाम है पुंज, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है इस कारण जो एक है, ऐसे अपार समय सारकों में समस्त बंद पद्धति को दूर करके अर्थात कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ, माने कर्मों के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं उनसे भिन्न भगवान आत्मा का मैं अनुभव करता हूँ। देखो यहाँ चित्त स्वभाव भर पद का प्रयोग है जो यह बताता है कि यह भगवान आत्मा चित्त स्वभाव से भरा हुआ है, भर माने भरा ही होता है, समझे ना, घबराना नहीं भाई, यही है। और भावित भाव अभाव भाव पद में भाव अभाव भाव, भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय और भाव माने द्रव्य होता है, तात्पर्य यह है कि पहले भाव का अर्थ उत्पाद, दूसरे भाव का अर्थ द्रव्य लेना, भावित का अर्थ है उत्पाद वे द्रव्य चित्त स्वभाव के द्वारा भावित होते हैं, भावित होते हैं माने होते हैं, अभी हम भावित क्या हुए, भावित कैसे होंगे, भावित कैसे होते होंगे, अरे उनका अस्तित्व है, द्रव्य होने से भगवान आत्मा का परमात्म स्वरूप उत्पाद वे द्रव्य से युक्त होना है और इसी कारण भगवान आत्मा एक है, ऐसा अपार समय सा स्वरूप भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा अनुभव करने से ही संपूर्ण बंद पद्धति से निवृत्ति होती है, इस कारण मैं समस्त बंद पद्धति का अभाव करता हुआ ऐसा अनुभव करता हूँ कि यह चैतन्य स्वरूप परमार्थ आत्मा मैं ही हूँ। अब जरा देखना, राग भी पर्याय है और उत्पाद व्यय भी पर्याय है, ठीक है कि नहीं, अब उत्पाद व्यय का तो निषेध नहीं किया और राग का निषेध कर दिया है ना, अभी उत्पाद व्यय का निषेध करने वाला भी एक नए है, 10 नए है ना द्रव्यार्थिक नए के, तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए वहां है, उनकी चर्चा अभी नहीं करता हूं, थोड़ी बाद में करूंगा, पहले तो आप ये समझ लो क्या कह रहा था मैं, कि यहाँ जो मतलब वो विकारी भाव का तो निषेध किया है और मूल उत्पाद में ध्रुव तो स्वभाव है उसका निषेध नहीं किया है यहाँ, और वो जो उत्पाद में निरपेक्ष नए है उसमें तो उत्पाद दे की अपेक्षा नहीं लेना उसका नाम निरपेक्षता है, निषेध वहां भी नहीं है, वो तो वस्तु का स्वभाव है भाई साहब। ये राग द्वेष तो नहीं रहेंगे ना सिद्धों में, उत्पाद में रहेगा कि नहीं रहेगा, यदि वो भी पर्याय होती है उसका भी नाश करके मोक्ष में जाना होता तो मोक्ष वाले जीवों को उत्पाद में नहीं होना चाहिए था। अब हमारी क्या दिक्कत है, हमारी दिक्कत ये है कि हम राग का निषेध करेंगे तो पर्याय का निषेध है, इसलिए उस उत्पाद में भी पर्याय है तो हम उसका भी निषेध कर लेंगे। अब उसका तो जाने दो, एक गुण भेद का ही कह देते ना, आत्मा में ज्ञान है दर्शन चारित्र का भी, क्योंकि वो भी पर्याय है, ज्ञान दर्शन चारित्र पर्याय है, ये भेद हो गया ना तो भेद को पर्याय बोलते हैं, जो जो पर्यार्थिक में का विषय उसको पर्याय बोलते हैं ना अपने है ना दृष्टि के विषय वाली किताब में, तो एक दृष्टि से उसे भी पर्याय बोलते हैं, वो सहभावी पर्याय नाम है उसका। अब आदमी जैसे ये पर्याय का निषेध करते हैं मनुष्य पर्याय का और राज पर्याय का, ऐसे उनका निषेध समझ ले तो अब अभिजय राग और उत्पाद दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं, क्योंकि राग का उत्पाद और राग का व्यय, तो हम यदि राग छोड़ते हैं तो उत्पाद भी छूट गया छूटेगा और उत्पाद रखते हैं तो राग भी घुस जाएगा। तो ये कहते हैं तेरी दृष्टि में ऐसा कमाल है कि वो उत्पाद में रह जाए और राग छूट जाए, क्यों जब दोनों हैं अलग। अरे भाई राग पर्याय नहीं है, घबराना नहीं, पर्याय की उपाधि है और उत्पाद में जो सुहाव रूप पर्याय है वो है। अब ऐसा भेद जब बारीकी से नहीं समझेंगे हम तो भटकते ही रहना, कभी उसे निकाल देंगे तो ऐसे हो जाएंगे निश्चयाभाषी हो जाएंगे, और कभी व्यवहारभाषी हो जाएंगे, कभी निश्चयाभाषी हो जाएंगे कभी व्यवहारभाषी हो जाएंगे। एक दिन मैंने कहा था ना कि कोई हमको निश्चयाभाषी देखने को मिलता ही नहीं है, और जिनको निश्चयाभाषी देखने को दिखाई देते हैं मेरी दृष्टि में वे निश्चय और व्यवहार आभाषों का स्वरूप ही नहीं समझते कि निश्चयाभाषी किसे कहते हैं और व्यवहारभाषी किसे कहते हैं, ख्याल नहीं ना। देखो इस संदर्भ में पांडे राजमल जी कलश टीका में लिखते हैं कि अब जो भी अंतर आता है वो सब मैंने दिए हैं, जो एक से आए वो सब छोड़ दिए, क्यों एक एक बात को रिपीट करने से क्या फायदा। अपनी एक किताब आपने सुनी है, बारह भावना एक अनुशीलन, पढ़िए, सबसे ज्यादा बढ़िया किताब और सबसे ज्यादा उपेक्षा उसकी हुई है, क्योंकि वो फंस गई बीच में, ना उसका गुजराती अनुवाद हुआ ना उसका मराठी अनुवाद, कुछ नहीं हुआ, अपने वो फुर्सत ही नहीं थी उसी तरह देखने की, क्योंकि नए चक्कर और इसी चीज एकदम हावी हो गई उसमें। मालूम क्या है, 2000 वर्ष में जितनी भी 12 भावनाएं लिखी गई हैं संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, गुजराती में, उस सारी 12 भावना उसमें हैं। अब क्या नहीं है कि हमने क्या किया, सारे की बहुत गहरी स्टडी की, जैसे अजमेर से छपी थी ना जिसमें 212 भावनाएं थी तो वो सब पढ़ी, तो इतनी कितनी बड़ी किताब हो जाएगी, तो उनमें 90% तो आपस में रिपीट ही करते हैं, सब एक सही होता है, तो 90 को लिखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो उनमें जो एक बहुत बढ़िया है वो ले ली बस खत्म, तो वो 90 की प्रतिनिधि हो गई। फिर 5% ऐसी हैं कि जिनमें बिल्कुल अलग से हटके बात की गई है, जो वो जनरल शैली है ना, कैसा कि वे संसार अनंत है, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, काल आएगा सबको खा जाएगा, और उसको लंबी लंबी करनी, शेर आएगा खा जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बचा पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, अब तुम 400 पेज में कर लिख दो और चाहे इतनी कह दो कि बस आत्मा क्षण भंग हो रहे हैं, मरने के कारण कोई बचा नहीं पाएगा, इतनी सीधी बात है। अब इतने में सब लिखी हुई है, हमने इतनी लिख दी। अब दूसरी भावना कहती है कि नहीं नहीं मर जाएंगे यही सत्य नहीं है, आत्मा अमर है ये भी सत्य है, और ये भी अनित्य भावना नहीं सोचो। वो जयचंद छाबड़ा की वो निकाल के हमने इलाज करी, द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिरे परे थिरे है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परे ने कर गुण। उसे हमने ये नई बात है क्या? अब बोधि दुर्लभ है, ऐसा है जे दुर्लभ है। आज सुबह बहुत अच्छी बात है, भावना अपनी चल रही थी कैसेट में, मैंने पूरी सुनी तो उसमें ये मर जाएंगे ऐसे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, इतना बड़ा ऐसा है कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा चित्र खींचा। क्यों? मैंने आज जो अपंत पूरी सुनी है, भाग्य से अभी आज पूरी हुई बात, कैसे हुई भगवान जाने, मेरे बीच में छूट छाट जाती है। क्यों? लेकिन उसमें बोध ही दुर्लभता के नाई तो नोध से निकलना मुश्किल है, फिर से निकलना मुश्किल है, फिर इससे निकलना मुश्किल है, फिर इससे निकलना मुश्किल है, फिर इससे निकलना, और निकलते 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 कितने निकलना निकाले। अब मैंने कहा निकल के आ गए ना, अब यहां खड़े हैं ना, यहां से बात करो ना। क्या? तो मैंने अपनी बारह भावना कहां से लिखा? मेरे ये है उत्तम कुल, यहां से लिया। अच्छा देश क्या है पद्म? उत्तम देश नर दे ये पाना बहुत साफ हो गया ना, यहां से लिया। अब इनकी बात करो ना जो तुम्हारे पास अभी है, वहां से निकल जाए नहीं, उससे काय को रो रहे समझ गया ना। अब इसमें क्या है? बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। अरे बोधि दुर्लभ भावना में दुर्लभ नहीं है ऐसा लिखा, तो ये नई बात है, तो ये निकाल के लाया जो किसी के ध्यान में नहीं थी। फिर उनमें से 1-2% ऐसी हैं कि और भी हैं, तो हमने वो सारी निकाल के रख दी, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2000 वर्ष की जितनी भाव भावनाओं की स्टाइल है वो सब इसमें आ गई। गद्य में तो विस्तार से किया ही है, और पद्य में भी ऐसी भी वायन है कार्य ज्ञान उपेक्षाएं जैसी कि जिसमें 500-700 गाथाएं हैं, उनमें 12 भावनाएं, 500-700 पेज हो गए, और ये ऐसी भी भावनाएं जो एक छंद में 12 ही भावना, वो भी अपन ने उसमें कोट किया है। जग में अनित असरण है सरगत है ना, पढ़ो है भैया भागचंद, भैया भागचंद तो भैया तो भगवती दास थे, भागचंद जी थे उनकी है ना, एक छंद में 12 ही भावनाएं, तो हमने सबसे छोटी भी लिखी। अब आप देखिए कि हम बड़ी कैसे कर सकते हो, छोटी कैसे कर सकते हैं, धर्म भावना है, धर्म अपना स्वभाव है, इतने में ही अपने काम चलता है। बोधि आपका भाव है ना, और पूरा जैन धर्म लिख दो, धर्म भावना में समय दर्शन समय ज्ञान समय चार समय दर्शन में 8 अंग 25-2 से रहे, मतलब क्या क्या बचे। तो उसमें मान लो कि 150-200 छंद होंगे, तो वो पूरा धर्म भावना में पूरा हो जाएगा। लोक भावना है, दो ही भावनाएं सबसे बड़ी है उसमें, तो लोक भावना में पूरा भूगोल लिख दिया, इस गजदंत वजदंत सब बता दे। तो अब उसमें जो वैराग्य है ना आनंद जंदी, वो वैराग्य कहां रहा, सुबह पर्वत नापते रहो। वो उस विस्तार में जाने से होगा क्या? विस्तार का रास्ता तो हम बता दें किधर बढ़ना है, क्या बोलू समझ में आया क्या नहीं आए? तो तीन लोग का नक्शा नापते रहो, फिर बस पूरा और धर्म में पूरा चरणा नहीं हो गए सब आ जाए, और प्रसाद तत्व और ये सब व्यवस्थाएं सब पूरा वर्णन कर दो, जैन धर्म में कुछ बाकी नहीं रहे, वो 12 भावनाओं में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और दो ही भावनाओं का वहां विस्तार है। तो एक کیا ہے اس سے ٹیکنک, ہم اس ٹیکنک کی اسٹڈی کرتے ہیں. اور وہ آپ کو سامنے لا کے رکھ دیا, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مانگے جو مانگ میں ہے وہی سب, جو سب جگہ ہے وہ مانگ میں ہے, اور جو مانگ میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہے. مانگ کبھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا؟ تو ہم انہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چھوٹی سی کتاب میں بارہ بھاوناؤں کے بارے میں جو ہے اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں ہے, سب اس میں ہے. کیسے ہے اس میں, کیسے ہے اس میں, جتنی اسٹائل ہیں وہ سب آ گئی نا, ہم نے جتنی ہم نے نکال کے رکھی گی نہیں, اور جو اس میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہے. ہم نے اپنے گیان کے حساب سے جتنی بھی اپلبدھ تھیں انہیں ہم نے دیکھ کے اسٹڈی کر کے, اب لکھنے کو تو اتنی کتاب چھوٹی, سمجھ گئے نا آپ کے, لیکن اس میں اسٹڈی کتنی کری, کتنی پڑھی. اب ان میں سے وہ سب کی پڑھی, اور ایک ایک دس میں سے ایک میں سے دو پنکتی لی, تو آپ کو تو پھر دو ہی دکھتی ہیں جو لی ہیں یہاں. جو ہم نے پڑھ کے نہیں لی وہ آپ کو کہاں دکھتی ہیں, لیکن ہمارے گیان میں تو ابھی بھی دکھتی ہیں نا, وہ اندر تو کھچت ہو گئے نا کہ وہ بھاو کیا ہے. ایک اسٹائل ہی, اور دوسری کہ راجا رانا چھترپتی یا تن کے اس بار مرنا سب کو ایک دن اپنی اپنی بار, اب یہ بنے ارے رائے رام بچیں گے نہیں بچیں گے نہیں, پھر رو رہے. ہم کہتے کیا لکھا, صاف تو لکھا ہے بنا نمبر آ کے مرو گے ہی نہیں, مرنا سب کو اپنی اپنی بار, اور مرتی بنیا جیو کو کوئی نہ راکھن ہار. جب مرنے کا نمبر آئے گا تب کوئی نہیں بچا پائے گا, جب تک نمبر نہیں آیا تب تک کوئی مار بھی نہیں پائے گا, یہ گارنٹی بھی تو ہے اس میں. اسی پنکتی میں ہے نا, بولیا وہ یہ سب نکال رہے ہیں, یہ انچت ہے, اس میں سے نکلتا نہیں ہے. میں نے ایک تو بتایا تھا آپ کو کہ یہ ایگل جی کی بارہ بھاونا ہے نا پوجا میں, میں نے ان کی سب کی پیروڈی لکھی تھی. پیروڈی جانتے ہیں آپ؟ اس میں نے کہا نا سمراٹ مہابل سینانی اس کھن کو ٹال سکے گا کیا, اسرن مت کایا میں جیون ڈھال سکے گا کیا. تو میں کہا, میں نے ایسا لکھا تھا, میں بھول گیا ہوں یہ پنکتیاں, ایک آدھ سنائی ہیں میں نے, ابھی یاد کروں گا تو آ جائیں گی, کہ اس کھن نے قبلت کیا آج تک بتلا تیرے کس کھن کو, تو اس کو کیوں روتا ہے کہ اس کھن کو ٹال نہیں سکے گا, اس کھن نے تیرا بگاڑا کیا ہے, کیا اس کھن نے قبلت کیا آج تک بتلا تیرے کس کھن کو. یہ بھی ایک کھنکن کا طریقہ ہے نا, وہ موت آئے گی اور تو ٹال نہیں سکے گا, لیکن میں بتا اس موت نے تیرا بگاڑا کیا ہے, یہ تو بتا مجھے. یہ سڑا گلا کپڑے پرانے لے گئے اور بھیا نئے نیو کپڑے لا کے تیرے کو پہنا دیے, کیا جنہیں کوئی بھکاری نہیں لیتا, ایسا شریر لے گئے اور ایک بڑھیا سندر شریر لا کے تیرے کو دے دیا, بالکل نیا ایک دم, دن دونا رات چوگنا بڑھنے والا. اس نے تیرا بگاڑا کیا ہے, اس کا رونا اتنا کیوں روتا ہے, ایسا ہر بھاگ لگا, اس میں اور کچھ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ ایک چنتن ایسا بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی بارہ ہی بھاونا ہے. لکھا ہے جب انتتا وستو دھرم ہے کیوں کر دکھ کر ہو سکتی, اور جب سوبھاو ہی دکھمے ہو سکھمئی کون سی ہو سکتی. ہر سمجھ میں آیا کہ نہیں, جب تم کہہ رہے انت ہے انت ہے انت ہے تو رو رہے, تو کیا ہو گیا, انت ہے تو کوئی انیائے ہے, انتتا وستو کا سوبھاو ہے کہ نہیں, انت تو دھرم آتما میں ہے کہ نہیں. کہ جب انتتا وستو دھرم ہے تو کیوں کر دکھ کر ہو سکتی, وہ دکھ دینے والی کیسے ہوگی, اور جب سوبھاو ہی دکھ کر ہو تو دنیا میں اور کون سی شکتی ایسی ہوگی جو سکھمئی ہو. دیکھو ایک شکتی اور ایک شکتی, انت سمجھ نہیں آ رہا, شکتی مانے طاقت, हो सकना। जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुखमय हो है, सुखमयी कौन सी हो सकती। क्या आप अकेला अवतर है, मरे अकेला हो या कभी अजीब गए, तो सब कहते हैं अकेला मरना पड़ेगा, अकेला जीना पड़ेगा। तो इस तरह सौभाग्य का दुर्भाग्य। अरे तीर्थंकर अपनी मां के अकेले ही पैदा होते हैं, साथ में तो कुकरी सुकरी के बच्चे होते हैं पैदा, आठ आठ दस दस, और सरपणी के होते हैं। एकाएक को रो रहा कि कोई साथ नहीं देता, क्या चाहता है तेरे माँ बाप भाई बहन बाल बच्चे तेरे ही साथ मर जाएं? कि मरण में साथ देने का क्या मतलब है, मेरे मरण में कोई साथ नहीं देता है, इसका क्या अर्थ बताओ। ये सही है, जबरदस्ती उनसे द्वेष कर रहे, कोई साथ नहीं देगा अन्यत्र भावना में, ये सही है कि कोई साथ दे नहीं सकता, ये सही है, नहीं देता है तो द्वेष पैदा होता है, दे नहीं सकता है तो वितरकता पैदा होती है। तो ये सब चीजें मैंने उसमें लिखी हैं, जो किसी के दिमाग में नहीं आती, जो सोचता नहीं है, आप समझे ना, नहीं पड़ता। अभी ऐसा एक व्याख्यान करते हैं ना, कभी भी मैं पंचकंड में कर दूं तो वहां पर 100-200 किताबें हो, आठ घंटे में बिक जाती है, और ये बात नहीं आवे तो भी रखी रहती, 10 साल तक कोई देख के पूछते ही नहीं है। क्या क्या करे, इसकी समझ ही नहीं आता कौन चीज पढ़ने लायक है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उसे बताना पड़ता, उसको बताना, तो ये कहते हैं अपनी किताब की गीत गा रहे। अरे गीत नहीं गा रहे, उसने क्या लिखा है वो हमें नस नस पता है ना, उसको कौन बताएगा तुम्हें, उस बात को कौन बताएगा, बोलो है? 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 अब इसमें कितनी बढ़िया समीक्षा लिखी जा सकती है, बबलू तू भी लिख सकता है। और वैसे बोले साहब इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, क्या क्वालिटीज है, आप समझ गए ना। देखो क्या लिखते हैं पांडे जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिट जाते हैं, क्योंकि पिछली गाथाओं में नए विकल्प मिटने की बात करे आए, इसलिए उसे उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, उसी प्रकार समस्त कर्मों के उदय से होने वाले भाव भी मिट जाते हैं, ऐसा स्वभाव है। इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में बनारसी दास जी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। देखो ये दो पंक्तियों का नाटक समय सार में कितना सुंदर रोचक तरीके से वर्णन किया है, पढ़ो कोई अगर आगे स्पीकर पर पढ़ो, ढंग से अच्छा कोई गले वाला होता। जैसे मां रतन की जोत में लहरी उठे, उन्हें पुरुष पढ़ना दो अशांति सुनो के साथ, ऊपर वो कितनी रूखी भाषा थी, ये कितनी गीली भाषा हो गई रसक। देखो जैसे महारत्न की ज्योति की लहर उठे, रत्न है उसमें ज्योति उठती है ना, तो वो ज्योति कहां से आती है, धूप में से आती है, और फिर वो कहां चली जाती है, उसमें से आती है, किसी दूसरे की जरूरत क्या है। ऐसे द्रव्य है रत्न, उसमें से पर्याय कहां से आती है, कि द्रव्य में से आती है, कहां जाती है, कि द्रव्य में चली जाती है, ये कहना चाहते समझिए। जैसे महारत्न की ज्योति में लहरें उठे, आया ख्याल में, और जल की तरंग जैसे लीन हो ये जल में, समुद्र है उसमें लहरें आ रही हैं, कहां से आई, हवा में से आई, और वे कहां चली गई, समुद्र में, क्यों खत्म हो गई, उठ जाएंगी फिर उठ जाएंगी। जल की तरंग जैसे लीन हो ये जल में, देखो रतन की ज्योति में उठना बताया, और जल की तरंग में लय होना बताया, अब दोनों में दोनों लगन है, एक एक में एक कह दिया है ना, उसी में से उठती है उसी में लय होती है, रतन की ज्योति भी और जल की तरंग भी। आ गया ख्याल में, तैसे शुद्ध आत्म दर्द पर आए करी उपजे बिन से थिर रहे निज थल में। वो समुद्र समुद्र में ही रहता है ना, अपने स्थान पर रहता है ना, है? रतन की ज्योति रतन में ही रहती है ना, ऐसे ही शुद्ध आत्मा की दिव्य पर्याय उपलब्धि नष्ट होती है और इस उसी में स्थिर होकर रहती भी है। उत्पाद में ध्रुव तीनों आ गए ना, ऐसे अभिकल्पी अजल्पी आनंद रूपी। अभी क्या अभिकल्पी माने मन के विकल्पों से रहित, अजल्पी माने वाणी के जल्प से रहित, बकवाद से रहित। अभिकल्पी और अजल्पी कौन है ये? आत्मा, आत्मा का विशेषण है ना, ऐसे अविकल्पी आत्मा, अजल्पी आत्मा और आनंद रूपी आत्मा। अब तुम ये आनंद का आनंद कर दो तो तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है बढ़िया की, दो मात्रा की, एक ही मात्रा की है तो आनंद ही चला गया। ऐसे अविकल्पी अजल्पी आनंद रूपी अनादि अनंत गह लीजे एक पल में। अरे अनादि अनंत में जो आत्मा है ना, उसे वाणी से बोलने की जरूरत है ना, मन के संकल्प की जरूरत है, वो आनंद स्वरूप है, एक क्षण में अपने ज्ञान में ग्रहण कर लो ना, झगड़ा खत्म। ये वचन विकल्पों से पार, मन के संकल्पों से पार है ना, एक पल में भैया अनादि अनंत गए लीजिए एक पल में। इतना लंबा है अनादि तक का अनंत तक एक पल में कैसे पकड़ेंगे, क्यों कोई दौड़ के जाना थोड़ी है, ज्ञान का गेय बनाना है ना, ताको अनुभव कीजिए, बस उसका अनुभव करो, मजा लो, उसे ग्रहण कर लो एक पल में और उसका मजा लो, परम पीयूष पीजिए, अमृत की धारा बरस रही है उसे पियो आराम से खूब। और बंद को बिलास दार दीजिए पुद्गल गले में, यो बंद कहाँ गया करना योग पूरा, उसे पुद्गल के खाते में डाल दो, वो पुद्गल पुद्गल से बना था ना, बंधे को बेलास दार दीजे पुद गले में, ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पीजे, और बंध को बेलास डाल दीजे पुद गले में। अब इसका अर्थ नहीं पढ़ते हैं, मैंने बताई दिया है, मैंने ही लिखा है, पढ़ लेना घर पे शांति से। देखो यहाँ यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार रत्नों की किरणों में किरणें रत्नों में से ही निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा की पर्याय का उत्पाद आत्मा में से ही होता है। जिस प्रकार जल की तरंगें जल में ही समा जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा की पर्याय व्यय होकर आत्मा में ही समा जाती हैं। देखो वो जो तरंगें हैं वो समुद्र में समा गई, तो तरंग के रूप में नहीं क्या समुद्र के रूप में समाने के बाद, है ना, समुद्र के रूप में नहीं ना, तो ये पर्याय अंदर गई आत्मा में समा गई, तो ये पर्याय के रूप में नहीं कि पारिणामिक भाव हो गई। अब ऐसा विचित्र है, और अब वो तो वहां तो पारिणामिक भाव हो गई, और अनंत केवलियों के ज्ञान में वो बिल्कुल पर्याय के रूप में दिख रही है, जैसी थी जो आई नहीं है बेबी, मैंने लिखा ना 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, ये किसी ने कहीं सुनी नहीं थी, अन्यमिनाथ ने कहीं पढ़ी नहीं थी, कि ज्योतिष ज्ञान से नहीं जानी थी, अनुमान से नहीं जानी थी, उन्हें अभी 12 वर्ष बाद जैसी द्वारका जलेगी, अभी प्रत्यक्ष जलती हुई दिखाई दे रही थी, वो तो उद्रव्य में पड़ी थी, जल तो नहीं रही थी ना, एक ज्ञान में यही सामर्थ्य थे, वो समुद्र में लहर समुद्र में चली गई और ज्ञान में आपके ज्ञान में वो खड़ी रहती कि नहीं खड़ी थी, आपने जैसी लहरें देखी थी उठती हुई, क्यों तो आपके ज्ञान में रहती कि नहीं रहती हैं, वो उसमें ज्ञान में रहती हैं और उसमें से समा जाती हैं, है ना। क्या अब क्या पढ़ रहे थे, देखो दिव्य रूप से, देखो व्यय होकर आत्मा में ही समा जाती है, आत्मा दिव्य रूप से ही सदा स्थिर रहता है, इस प्रकार है भगवान आत्मा अपने में ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर रहता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ उत्पाद को समझाने के लिए रत्न की ज्योति का और व्यय को समझाने के लिए जल की तरंगों का उदाहरण दिया है। क्या जल की तरंगों के उदाहरण से है बात भी स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार जल की तरंगें जल में समा जाती हैं, उसी प्रकार व्यय होने वाली प्रजाएं द्रव्य में ही समाहित हो जाती हैं, कहीं बाहर नहीं चली जाती। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रजाएं व्यय होकर आत्मद्रव में उद्यादि भावों के रूप में न रहकर पारिणामिक भाव के रूप में रहती हैं। तो वो सब चीजें लिख दी उसने, अरे छोड़ा नहीं कुछ भी मैंने। यहाँ बनासीदास जी कर रहे हैं कि हे भाई, वाणी और विकल्पों से पार है ना, अजल्पी अविकल्पी है ना, आनंदमयी अनादि अनंत आत्मा को इसी समय एक पल में ही ग्रहण कर लीजिए ना, हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, कर लो ना, ले लो ना, क्या हमें समझा दो, समझ लो ना, समझाई दे रहे एक पल में ग्रहण कर लीजिए, परम अमृत रस का पान कीजिए और बंद की चर्चा को पुद्गल की कृति जानकर अपने उपयोग में से हटा दीजिए, इसी में सार है और सब असार है संसार है। ज्ञान प्रधान कथन होने से यहाँ यह कहा गया है कि जिस चित्तपुंज आत्मा के द्वारा अपने उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं, मैं उस समय सार रूप आत्मा का अनुभव करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ कहेंगे पर्याय सहित वाले की बात हो रही ना, तो समय सारे में सहित है ही नहीं, पढ़ा कहाँ है तुमने, सिलेक्टेड गाथाएं पढ़ी हैं तो तुम्हें पता नहीं है कितना क्लियर लिखा है। यहाँ यहाँ पर्याय को अलग करके बात हो रही है, शामिल हो गए उत्पाद वे सापेक्ष में है, वो भी तो द्रव्यार्थिक में है भाई साहब, और निरपेक्ष भी द्रव्यार्थिक में है, एक वो भी दृष्टि है, एक ये भी दृष्टि है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है।